अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाळुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर भुज घर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीव तुम में तुम हो सभी में हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीव तुम में तुम हो सभी में हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भूल मुनि सच्चिदानंद गण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगज्जननी अम्बे माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन दिव्य तपोभूमि और ऐसी शुद्ध पवित्र महापुरुषों के तपतेज से भरी हुई भूमि का हम लोग आनंद लेते हुए नित्य प्रति की सत्संग सुधा वर्षा में पुनः उपस्थित हैं। हमारा आपका पुण्य प्रताप जिसके कारण ये नित्य प्रति का सत्संग हम लोगों को प्राप्त होता है, महापुरुषों को, भगवान को इसके लिए बारंबार धन्यवाद कि उन्होंने हमको आपको ये क्षण प्रदान किए। तो ऐसे जगत के ईश्वर जगदीश्वर का हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से पिछले लगभग एक मास से जो है चिंतन कर रहे हैं। भगवान की बाल चपल लीलाएं, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध और साधारण सी दिखने वाली भगवान की जो असाधारण लीलाएं हैं, हम लोग उन्हीं के ऊपर विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक साधारण से साधारण जीव भी इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी इस बंदर के नाच से जिसको कहा जाता, हम लोग जो जन्म जन्मांतरों से ये नाच रहे हैं, इससे मुक्ति एकमात्र तरीका है भगवान की शरण, परमेश्वर की शरण। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तो भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हमको आपको यही समझाने की चेष्टा की है। हम लोगों ने भगवान के गोवर्धन यज्ञ का श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान जो है अपनी साधारण सी दिखाई देने वाली लीला यानी व्यर्थ की जो परंपराएं जिनका हम लोग अनावश्यक रूप से निर्वाह करते हैं और कभी कभी वो कुल परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं अध्यात्म के मार्ग में ऐसी किसी भी परंपरा का जो हमारे मार्ग में बाधक हो और जिसका हमारे लक्ष्य से कोई लेना देना ना हो उसका तत्क्षण परित्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास जी ने मीरा को पद लिखा कि नहीं, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके ही न राम वैदेही, है ना। जो हमारे रास्ते से संबंधित नहीं है उसका परित्याग कर देने में किसी भी प्रकार से हिचक नहीं करनी चाहिए और उसको छोड़ने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो ऐसी बहुत सी परंपराएं खाने की पीने की या तरह तरह के त्योहार हैं या बहुत सी जो हमारी लौकिक जो है परंपराएं हैं उनका त्याग करके हम जो है पूर्णतया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, यही हमारे जीवन का परम जो है आनंद है। तो एक छोटी सी लीला, आज अंतिम दिन है और विचार था कि इस बार पूरा एक महीना मिला है तो अंत तक, क्योंकि कंस के उद्धार के संग भगवान की बाल लीला की समाप्ति होती है। जो असली जो कार्य भगवान का था, कंस के उद्धार के लिए ही भगवान प्रकट हुए थे। तो ऐसे कंस का उद्धार जो लीला है भगवान की, बाल लीला की अंतिम लीला जिसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसके पश्चात भगवान का उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान जो है संदीपनी ऋषि के आश्रम में लौकिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। तो ऐसा जो भगवान का बाल लीला चरित्र है, लेकिन ये प्रारब्ध है और प्रारब्ध के अनुसार ही या भगवान के आदेश के अनुसार ही हमको चलना है, तो ऐसा संभव नहीं हो पाया। और आज एक छोटी सी लीला है जो हमारे जो भगवान ने गीता में एक सूत्र दिया, युक्ताहार विहारस्य, है ना। जो परमेश्वर के भगवान के जो भक्त हैं उनका जीवन बड़ा युक्त होता है, युक्त मतलब युक्त रूप से, यानी किस प्रकार से कार्य को करना है या किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को ग्रहण करना है, उसके लिए समय निर्धारित है। स्नान है, ध्यान है, जैसा कि आज कल आप देख रहे हैं कुंभ का समय चल रहा है, तो कुंभ के समय लोग जाते हैं महाराज, तो जब जिसका मर्जी आ जाए, रात के 2 बजे नींद खुल जाए तो रात के 2 बजे जाके डुबकी लगा लेते हैं, बोलते हैं हमने तो 2 बजे ही रात की डुबकी लगा ली है ना। तो ऐसा है, आपने देखा होगा शिवरात्रि का त्यौहार होता है, रात के 12 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं और बोले हम तो 2 बजे दर्शन कराए। तो यहां पर भगवान ने उसी चीज को समझाने की चेष्टा की है कि हमारे यहां दिन और रात्रि दो चीजें विभाजित की गई, एक है दिन और दूसरा है रात्रि। तो दिन में विचरण करने वाले और रात्रि में विचरण करने वाले, यानी रात्रि में जिनको दिखाई देता है या रात्रि में जिनको दिन का आभास होता है उनको निशाचर कहा जाता है ना। तो जो निशा में ही विचरण करते हैं इसलिए उसको निशाचर कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा जो है निशाचर यानी रात्रि में विचरण करते हैं। इसी प्रकार से सांप हैं या उलूक हैं पक्षियों में, तो ये जीव निशाचर कहलाते हैं क्योंकि रात्रि में ही इनकी शक्ति जागृत होती। भूत प्रेत हैं, है ना। लेकिन जो हम मनुष्य हैं हमारे लिए दिवस निर्धारित किया गया है ना, आपको रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहां मुहूर्त निकाला गया, स्नान यानी हमारा जो दिन प्रारंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे, प्रातःकाल 4 बजे जो है हमारे यहां, उससे पहले के स्नान को निशाचर स्नान माना जाता है। साधारण सी लोकाचार व्यवस्था जो हमारे यहां बनाई गई है, क्योंकि हम लोग अक्सर जो है अत्यधिक भावावेश में आकर नियम कानून का उल्लंघन करने लगते हैं और उसमें ही हम अपने आप को बुद्धिमान घोषित कर देते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते हैं। और इसीलिए यहां पर जो है साक्षात उदाहरण बनाया गया स्वयं भगवान के पिता नंद बाबा को, इसका उदाहरण बनाया गया कि किस प्रकार से कहते हैं एकादश्याम निराहारा सभ्यर्च जनार्दनम स्नान तुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। कहते हैं नंद बाबा ने एकादशी का उपवास किया और रात्रि में ही द्वादशी लगने वाली थी, इसलिए उन्होंने सुबह का इंतजार करने की बजाय जो है रात्रि में ही निशाचरों का जो काल 4 बजे से पूर्व का माना गया है, जिसमें गंधर्व विद्याधर आदि नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं या जो है निशाचर लोग स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसी उस आखिरी वेला में तम गृहीत्वा नयत भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम् अभिज्ञायासुरीम् वेलाम् प्रविष्टमुदकम् निशि। कहते हैं आसुरी वेला में जो है यमुना के जल में प्रवेश कर गए और इसका परिणाम ये हुआ, देखो भगवान के पिता हैं, कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। लेकिन महाराज जो भगवान के गण हैं या जिसके भी देवता के जो गण हैं उनको अपनी कार्य जो कार्य उनको सौंपा गया वो करना ही करना। तो वरुण का जो है एक सेवक, कहते हैं भृत्यो वरुणाश्चासुरो अंतिकम, वहां पर एक जो है वरुण का गण स्नान करने के लिए आया था और जब नंद बाबा ने उसमें गोता लगाया और मनुष्य को उसने जो है स्नान करते हुए देखा तो महाराज उनका हरण करके वरुण लोक ले गया हो। यानी भगवान ये समझाना चाहते हैं जिस चीज का जो समय निर्धारण है ना। अभी देखा आप कुंभ में लोग जाएंगे रात में ही जाकर 2 बजे 2:30 बजे मंदिर में दर्शन करने लगना और स्नान करने लगना, उसका कोई उपयोग नहीं है, है ना, सब जो है निरर्थक माना गया है। तो यहां पर साक्षात नंद बाबा बताए गए हैं उदाहरण के रूप में। कहते हैं जब इस प्रकार से नंद बाबा का हरण हो गया और उनको जो है वो वरुण का भृत्य यानी जो सेवक था वो वरुण लोक उठाकर ले गया तो महाराज चारों तरफ हल्ला मचा प्रातःकाल और सबने जो है भगवान श्री कृष्ण को ढूंढना प्रारंभ किया, क्योंकि हर सारी दुनिया की बाहर भीतर की जानने वाले है ना, जब भगवान ने देखा कि जो है इस प्रकार से ये लोग परेशान हो रहे हैं, उनको समझने में देर नहीं लगी कि मेरे पिता ने जो है गलती की है और इसका परिणाम जो है उनको वरुण का सेवक जो है उठाकर ले गया। कहते हैं जब भगवान से प्रार्थना की नंदग्राम के निवासियों ने तो भगवान ने जो है वरुण लोक की ओर प्रस्थान किया। प्राप्तं वीक्ष्य हृषीकेशं लोकपाला सपर्ययः महत्या पूजयित्वाह तद्दर्शन महोत्सवः। जब लोकपाल है ना, ये वरुण आदि जो हैं, भगवान सूर्य नारायण हैं या जल देव जिनको हम लोग कहते हैं, तो ये सब हमारे लोकपाल हैं। लोकपाल मतलब जिनसे सृष्टि क्रम चलता है। तो लोकपालों की अवहेलना जब हम करेंगे तो महाराज है ना, एक जिसे कहते हैं ना सांप जो है आराम से अपने बिल में बैठा हुआ, अब वो आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, अब उस सांप को जाके आप क्या करो हैं, छेड़ दो। तो अब इसमें सांप अगर आपको काटे तो इसमें सांप का दोष या आपका दोष, क्यों भाई, दोष हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो महाराज इसी प्रकार से जब इन लोकपालों को, जितने भी ये वरुण देव हैं, जल के देवता या आकाश अंतरिक्ष, जितने भी हमारे ये लोकपाल कहलाते हैं, भगवान सूर्य नारायण चंद्र नारायण हैं, तो ये जितने भी लोकपाल हैं यानी जिनसे ये सृष्टि क्रम चलता है, जब हम इनके संग छेड़खानी करेंगे तो महाराज जब ये छेड़खानी करते हैं तो फिर हमारे लिए जीना मरना बड़ा समस्या गंभीर हो जाती। तो कहते हैं जब वरुण ने देखा कि स्वयं भगवान ही, क्योंकि हमको ही बनाने वाले जब हमारे ही दरबार में आ गए, कहते हैं जो अंतर इंद्रिय कहते हैं पूर्णतया जो सबके बाहर भीतर उपस्थित हैं, बहिरिंद्रिय और सबके प्रवर्तक हैं, अंदर की इंद्रियां, बाहर की इंद्रियां, अतीन्द्रियां, सबको जो है प्रवर्त करने वाले स्वयं भगवान उनके यहां पधारे हैं। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की जो है उन्होंने पूजा की, और पूजा करके महाराज भगवान को जो है पूर्णतया उन्होंने वंदना करना प्रारंभ किया कि आज मेरा जो है शरीर ग्रहण करना, इस शरीर धारण करना, वरुण का शरीर ग्रहण करना मेरे लिए कितना शुभ हो गया, क्योंकि साक्षात प्रभु मेरे दरबार में आए हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर और विशाल स्तुति करके वरुण देवता ने जो है भगवान की स्तुति की। और देखिए बिल्कुल एक बड़ा सुंदर रहस्य यहां पर स्तुति में खोला गया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। कहते हैं आप ही जो है भक्तों के, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, हैं भक्तों के लिए आप ही भगवान हो और वेदांतियों के लिए ब्रह्म हो। भगवते ब्रह्मणे परमात्मने है ना, तीनों चीजों को समझ लो। भक्तों, भक्त जो है उसी को भगवान कहते हैं और वेदांत वाले उसी को ब्रह्म कहते हैं और योगी लोग उसी को परमात्मा कहते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, यानी तीनों एक ही चीज है। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर भगवान के स्वरूप की यहां पर बताई गई है, कहते हैं ना यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना, आपके स्वरूप में ये जो विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना है, ये जो हम लोग आप लोग अपने आप को जीने मरने वाला या इस संसार को भोगने वाला मानते हैं, ये आपके स्वरूप में बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा कौन कहता है, यत्र श्रूयते, ये श्रुतियां कहती है महाराज है ना, क्योंकि श्रुतियां कहती हैं कि आपके शरीर को माया स्पर्श भी, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, या वेदांतियों के द्वारा जिसको ब्रह्म कहा जाता है और योगियों के द्वारा जिसको परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, ऐसा जो परम ब्रह्म है, आप जिस शरीर को धारण किए हुए हैं इसमें महाराज माया का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है। ऐसा जो आपका स्वरूप मेरे समक्ष है ना, भगवान का जो साक्षात सगुण साकार रूप उनके सामने खड़ा है, उसको मैं क्या करता हूं, कहते हैं नमस्कार, नमस्तुभ्यं, उसको मैं नमस्कार करता हूं। ये स्तुतियां हैं हमारे यहां की है ना, क्योंकि स्तुति में भगवान का जो परम विशुद्ध रूप है उसी का ही वर्णन आता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है भगवान की स्तुति की और पुनः जो है क्षमा मांगी कि मेरे जो है भृत्य ने, मेरे सेवक ने जो है ऐसा कार्य किया, अज्ञानता के कारण आपके पिता का हरण किया, लेकिन भगवान तो हमको आपको समझाना चाहते हैं लीला के माध्यम से कि दूसरे के क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए है ना। भक्त कौन कहलाएगा, आपने देखा नहीं आजकल जब विशेष त्योहार होते हैं, गणपति का त्योहार हो, शिवरात्रि हो या नवरात्रि हो, तो मंदिरों में एक विशेष व्यवस्था होती है, उसका नाम है VIP व्यवस्था। और वीआईपी व्यवस्था से भी बढ़िया कौन सी व्यवस्था, वीवीआईपी व्यवस्था है ना। उसको जो है कुछ भी इंतजार नहीं करना पड़ता, उसको ले जाके सीधे भगवान के सामने क्या कर देते हैं, खड़ा। तो इसका मतलब उसको तो भगवान मिल गया क्यों भाई, और जो लाइन के आखिरी में लगा उसको तो भगवान मिलने वाला है नहीं। तो ये जो हम दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, व्यवस्था तो वो कहलाएगी, भगवान का भक्त तो वो कहलाएगा जो महाराज वीआईपी होते हुए भी लाइन में लग के भगवान के क्या करे, दर्शन करे। यदि आपको प्रेम है तो उसके लिए क्या करो, तपस्या करो। करते हो कि नहीं करते हो? अरे आप जितने भी संसार के जितने भी कार्य हैं, बिना तपस्या के कोई कार्य होता सिद्ध? एक भी कार्य आपका बिना तपस्या के सिद्ध नहीं होता, चाहे वो भोजन बनाना हो, चाहे वो कपड़े धोना हो या पहनना हो, हर कार्य के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, और उस तपस्या का परिणाम ही आपको प्राप्त होता है संसार के रूप में। तो ये जो वीआईपी व्यवस्था है वहां, तो भगवान कहते हैं यहां कोई वीआईपी नहीं है मेरे संसार में। नंद बाबा को इसीलिए उदाहरण बनाया उन्होंने, यद्यपि जो है यहां पर वरुण देवता क्षमा मांग रहे हैं, है ना, कि बड़े खुश हो जाते हैं लोग, महाराज हमने तो दो मिनट में दर्शन, लाइन तो बड़ी लंबी लगी थी, हमने दो मिनट में भगवान के क्या कर लिए, दर्शन कर लिए, है ना। कोई पैसा दे के कर लेता है, कोई वीआईपी बन के कर लेता है महाराज, और प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा का पूरा इलाका खाली करा दिया जाता है। तो उस हिसाब से तो भगवान किसका हुआ है, किसका हुआ, प्रधानमंत्री का हुआ कि नहीं हुआ? तो हमको आपको तो मिलने वाला है नहीं, मिलेगा संभावना नहीं दिखाई देती है ना। अगर इस कानून को माने, सांसारिक कानून को माने, तो भगवान हमको कभी मिलेंगे, संभव ही नहीं महाराज। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ही मिलेंगे, तो ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं मेरे दरबार में सब बराबर हैं, और इसलिए सब कुछ जानते हुए, ऐसा नहीं कि वरुण का भृत्य या सेवक ऐसा बिल्कुल मूर्ख था कि उसको कुछ मालूम नहीं था, सब कुछ जानता था। वो यमुना के जल में स्नान करने स्वयं आया था, वो खुद भी जानता था कि ये भगवान का क्षेत्र है और भगवान के भ्रत वृंद जो है यहां पर रहते हैं, तो सब कुछ जानता था। लेकिन भगवान ने हमारे आपके लिए एक बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो है संदेश दिया है, यदि अध्यात्म का आपके ऊपर जो है असर हो गया, प्रभाव हो गया, तो भगवान के रास्ते में कभी भी वीवीआईपी या वीआईपी बनने की चेष्टा मत करना, क्योंकि उस ब्रह्म को कहा ही निर्विशेष ब्रह्म जाता है। हर चीज के संग आप उपाधि लगा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म के संग कोई उपाधि है, ब्रह्म के संग कोई उपाधि नहीं महाराज। ब्रह्म अपने आप में एक पूर्ण सत्ता है, इसलिए उसमें कोई विशेषण नहीं लगाया जा सकता। तो इसी प्रकार से भगवान का भक्त भी कभी वीआईपी और वीवीआईपी नहीं बनता, और भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण दोनों की लीलाओं में आप जाकर देखो तो अर्जुन का रथ हांकने वाले कौन है? अगर भगवान वीआईपी बन जाते तो रथ हांकते हैं? देखिए भगवान श्री राम का जंगल में घूमते, लेकिन महाराज ये क्यों किया भगवान ने, इसीलिए हमको आपको समझाने के लिए। लेकिन हम जो है अध्यात्म में ये गलतियां करते हैं, और करने के बाद गलती मानने को भी तैयार नहीं होते। इसलिए सबसे पहले इस लीला के माध्यम से ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि भगवान हमको कभी भी वीआईपी या वीवीआईपी के रूप में स्वीकार करेंगे। भगवान किसको स्वीकार करते हैं, हैं? क्यों भाई, भगवान जैसे कबीरदास ने कहा कि नहीं, जो है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना। तो वीआईपी तो क्या है, वो तो खजूर के पेड़ की तरह है, ना उसका फल मिलता है और ना उससे, वो छोटा सा पेड़ बहुत सुंदर है जो एक थके हुए पथिक को क्या देता है, छाया देता है। क्यों भाई, मेरा कहना तो ये है, शास्त्र का कहना, आप लोगों का कहना क्या है, हैं? क्यों भाई, वो तो इतना लंबा हो गया महाराज, ना उसका फल खा सकते और ना, लेकिन साधारण से पेड़ के नीचे जाकर आप अपनी भूख भी मिटा सकते हैं और महाराज थके हुए शरीर को छाया में विश्राम भी दे सकते हैं। इसलिए भगवान ने अपने पिता को यहां पर उदाहरण बनाया है। और जिस समय भगवान से उसने क्षमा, वरुण देवता ने क्षमा मांगी और उनके पिता को जो है वापस दिया, तो भगवान अपने पिता को लेकर महाराज अपना जो है पूजन करवाने के पश्चात, जब सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा आदि के भी जो ईश्वर हैं, इस प्रकार उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर अपने पिता को लेकर महाराज वापस आ गए और बंधुओं को लाकर जो है दिया, तो महाराज वहां पर जो है नंद बाबा आश्चर्यचकित होकर भगवान का वर्णन करने लगे। कहते हैं, नंदस्त्वतिन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम् कृष्णे चा संतिम तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मतो ब्रवीत। कहते हैं नंद बाबा ने जो वरुण लोक में है ना, क्योंकि भगवान तो उनके लिए क्या थे, देखो भगवान तो उनके लिए अपने लाला थे, क्या थे, हाँ नंद के लाला, क्या थे, नंद के लाला महाराज। साधारण सा एक बालक था, लेकिन नंद बाबा ने देखा कि वरुण लोक में भगवान की क्या हो रही है, हाँ महाराज विशाल पूजा का दृश्य उन्होंने देखा और जितने वरुण के जितने भी सेवक थे सब मिलकर भगवान की आरती कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जब ऐसा विशाल रूप महाराज वहां पर देखा तो अपने जो है नंद के ग्राम के लोगों को बताया महाराज ऐसा लोकपाल का। कहते हैं नंदस्त अतीन्द्रियदम, कहते हैं जो इंद्रियों से परे ऐश्वर्य जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे महाराज सुख संपत्ति वैभव को जो उन्होंने वहां पर देखा था, और ऐसे सुख संपत्ति वाले महाराज कृष्णे चा सन्न नतिम तेषाम, वो महाराज झुक झुक कर जो प्रणाम कर रहे थे, आश्चर्य हुआ महाराज नंद बाबा को, क्या ये वही हमारा लाला है जिसको हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं। अरे नंद बाबा यशोदा तो भगवान को क्या करते थे, अरे डांटते थे कि नहीं डांटते थे, डांटते थे महाराज, है ना, नंद बाबा डांट लगाते थे, ऐ छोरा ऐसा कहके महाराज। लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो कुछ और ही है महाराज, है ना, ये वो छोरा, ये है भगवान, ये है परमेश्वर और ये है वेदांत। ज्यों ज्यों आप इस रास्ते में अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों आपके अंदर भी यही स्वभाव क्या हो जाएगा, आ जाएगा महाराज, आपको भी झुकना आ जाएगा, आपके अंदर भी विनम्रता आ जाएगी, आपके अंदर भी प्रेम और अनुराग आ जाएगा, प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व आ जाएगा। कहते हैं जब उन नंद बाबा के मुख से इस प्रकार से गोपों ने सुना तो महाराज वो बड़ी विचार करने लगे कि साक्षात परमेश्वर ही हमको जो है इस रूप में मिले हैं। कहते हैं इसलिए जो है उन्होंने प्रार्थना की और मन में इच्छा की कि क्या भगवान भी हम लोगों को कभी जैसा दृश्य अपने पिता नंद बाबा को दिखाया है, क्या भगवान हमको कभी ऐसा अपना धाम दिखाएंगे, है ना, देखो जिस धाम का भगवान ने वर्णन किया है ना गीता में, क्या कहा गीता में भगवान ने, क्या कहा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो ममः। तो ऐसा जो भगवान का परम धाम है महाराज, है ना, क्योंकि साधारण दृष्टि तो ये देखना चाहती है कि महाराज वैभव, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो भोले भाले आत्मीय मेरे जो गोप वृंद हैं उनकी अभिलाषा को वो जान गए, और भगवान जो है यहां पर विचार करने लगे कि देखो कैसी विचित्र बात है। जब उन्होंने उनके संकल्प को देखा कि नंद बाबा ने जो दृश्य देखा है वही दृश्य हमको देखने को मिले, कहते हैं जनो वै लोके तस्मिन् विद्या काम कर्म भी उच्चावचाशु गतिशु नावेद स्वाम गतिम भ्रमन। कहते हैं देखो भगवान कितनी विचित्र बात है कि संसार में जनो वै लोक एतस्मिन्, कहते हैं इस लोक में जो है ये जीव अपने अज्ञानवश क्या करता है, कहते हैं अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है, शरीर में ही आत्मबुद्धि करने लेने के कारण परिणाम ये होता है कि अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए वो तरह तरह के महाराज रूपों को फल रूप में महाराज कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, और तरह तरह की कभी ऊंची और कभी नीची योनियों में भटकता फिरता है। लेकिन जो वास्तविक नावेद स्वाम गतिम भ्रमण, ना वेद स्वाम गतिम, अपने स्वरूप को अपने आत्मस्वरूप को न पहचानने के कारण इस प्रकार से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी देवता बनता है कभी कीड़ा बनता है, कभी नाली के कीड़े बनने में उसको आनंद आता है कभी इंद्र बनने में आनंद आता है, और इस प्रकार से ये जीव अपनी कामनाओं को भोगता हुआ भटकता रहता है। भगवान कहते हैं देखो कितनी विचित्र बात है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान बड़े दयालु हैं, कृपा के धाम जिनको कहा जाता है। इति सच्चित्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसा परम। कहते हैं ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने ये सोच करके, ये जो माया अंधकार में घिरे हुए हैं, ये जो जीव हैं, इनको क्या करना चाहिए, अपना वास्तविक परम धाम दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान से भी क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको भी एक सुंदर सा लोक देखने को मिले, लेकिन भगवान उनके संग बहने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान तो बिल्कुल क्या है, विशुद्ध हैं, और वो विशुद्ध रूप को ही दर्शाना चाहते हैं, माया अंधकार में अपने भक्तों को फंसाना नहीं चाहते। इत संचिंत भगवान महाकारण को हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। ये जो गोपों को महा अंधकार में स्थित थे जो महाराज, वहां से निकालकर भगवान ने उनको जो है अपने परम धाम का क्या कराया, दर्शन कराया महाराज। कौन सा दर्शन, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्य पश्यन्ति मुनियो गुणापाये समाहिता। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने उनको जो है उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया, सत्यम ज्ञान अनंतम यत, जो स्वयं सनातन है, सत्य स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, अनंत है, और समाधिनिष्ठ जो गुणापाये समाहिता, यानी समाधि में स्थित जो संपूर्ण गुणों से रहित महापुरुष जिसको देख पाने में सक्षम हो पाते हैं, भगवान ने उन साधारण से गोपों को, ये जो समझने योग्य, जिस लिए हमने श्रीमद् भागवत का ये दशम स्कंद लिया है, भगवान किसी के लिए बाधित नहीं है, परमेश्वर किसी के लिए बाधित नहीं है महाराज। जो भी इच्छा करेगा, जिसके अंदर भी उससे मिलने की इच्छा जागृत होगी, उसके लिए वो प्रकट है महाराज। जिस समय गोप वृंदों ने ये इच्छा की तो भगवान ने उनको जो है अपना स्वरूप दर्शन कराया, कौन सा, सत्यम ज्ञान अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, जो सनातन तत्व है, स्वयं ज्योतिष स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, और जिसको केवल और केवल गुणा पाए समाहिता, समाधि में स्थित होकर गुणातीत पुरुष ही दर्शन कर पाते हैं, साधारण से गोप वृंदों को भगवान ने ऐसे सनातन धाम के क्या कराए, दर्शन कराए, यानी परम सत्य का जो है उनको दर्शन कराया, जिसको हम लोग आत्म साक्षात्कार कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार से, जिसमें जो है उन्होंने अक्रूर जी को जो है नहलाया था, तेतु ब्रह्म हृदयम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रता ददर्शु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात पुरा। कहते हैं जिस जल में जो है अक्रूर जी को स्नान कराया था भगवान ने, ब्रह्म हृदय जिसको कहा जाता है, उसी ब्रह्म हृदय में महाराज उनकी डुबकी लगवा दी, और वहां से निकालकर उनको परम धाम में निवास करवा दिया। यानी कहने का तात्पर्य, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यानी जो कुछ भी प्राप्तव्य है वो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, चाहे कान सीधा पकड़ो और चाहे कान, दोनों रूपों में परमात्मा का वर्णन हमारे यहां आता है। एक तरफ तो उसको कहा जाता है पाणिपादो जवनो ग्रहीता, कि ना तो उसके हाथ दिखाई देते हैं, ना पैर दिखाई देते हैं, ना उसका कोई रूप दिखाई देता। एक रूप तो ये वर्णन आता है श्रुतियों के माध्यम से, और दूसरा श्रुतियां कहती हैं सहस्त्र शीर्खा सहस्त्रपुर, है सहस्त्र सिरों वाला, सहस्त्र पैरों वाला महाराज, है ना, ऐसा है। तो वास्तविकता में दोनों रूपों में, चाहे आप सगुण रूप में और चाहे आप निर्गुण निराकार रूप में, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, मन से भी तेज गति वाला परमेश्वर है ना, क्योंकि सबसे तेज गति किसकी है, मन की। आप यहां से बैठे बैठे अपने मन के द्वारा महाराज जितने क्षेत्रों का आपने विचरण किया या नहीं किया, यहां से बैठे एक सेकंड में चंद्रमा चले जाओ, रॉकेट तो बाद में जाएगा, आपका मन पहले पहुंच जाएगा। क्यों भाई, इतनी तेज गति है महाराज, सूर्य और चंद्रमा में पहुंच सकता है सेकंडों में महाराज, लेकिन उससे भी तेज कौन है? वो परमेश्वर, वो परमात्मा जो उस मन से भी पहले वहां पर क्या है, उपस्थित है महाराज, है ना। तो इसलिए अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत् चक्षु सश्रणोत अकर्णा, बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है, लेकिन उसी परमात्मा को श्रुतियों ने दूसरे रूप में वर्णन किया, सहस्त्र शीर्खा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजारों पैर वाला, हजारों सिर वाला, हजारों आंखों वाला। क्यों भाई, देखा ऐसा ईश्वर आपने? देखा नहीं? देखा, देखना है, पैसे खर्च करके या बिना पैसे के? हैं, 1 लाख रुपए टिकट लगेगी, अभी दिखाएंगे, बोलो दोगे? बोले महाराज नहीं देखना। देखो, अरे देखो, ये इतने सारे नेत्र सब किसके हैं? अगर तुम्हारे हों तो अपने मान लो, और भगवान के हों तो भगवान के मान लो। इतने सारे नेत्रों से वो देख रहा है, इतने सारे सिरों से जो है वो विचार कर रहा है, इतने सारे मुखों से वो क्या कर रहा है, भक्षण कर रहा है महाराज, इतने सारे हाथों से वो क्या कर रहा है, सहस्त्र शीर्खा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, ये परम ब्रह्म का विराट रूप है, इसमें हम आप सब सम्मिलित हैं, है ना। आपको सुनाया था कि माता यशोदा ने जो है भगवान के अंदर अपने आप को देखा, है ना, सब कुछ उसी के अंदर है, उससे रहित कोई दूसरी चीज यहां पर नहीं है महाराज, केवल वही और वही है, उसी का नाम है अपाणि पादो जवनो ग्रहीता। और महाराज वो बिना हाथों के कार्य करता, देखो आपने देखा कभी आपको दिखाई दिए उसके हाथ की बादल को पकड़ के लाया हो महाराज, देखा कभी आपने वर्षा ऋतु में कि हाथ से पकड़ पकड़ के बादलों को खींच के कोई ला रहा हो, किस प्रकार से अपने आप वो बादल आ जाते हैं और किस प्रकार से वो बारिश अपने आप बरसने लगती है महाराज, कोई नहीं जानता वो बीज सड़ जाने के बाद उसमें से हरियाली कैसे फूटती, बोलो क्यों भाई, देखा आपने कभी? अच्छा, आपने कभी अपने शरीर में अनुभव किया है कि आपके बाल कैसे बढ़ जाते हैं, आपके नाखून कैसे बढ़ जाते हैं? क्यों भाई, कौन बढ़ाता है? ये है अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत् चक्षु सश्रणोत अकर्णा, बिना महाराज हाथ पैरों के वो काम करता है। देखो आपका सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से महाराज सब कुछ बनता रहता है। आपको मालूम है आपके शरीर में अरबों, एक दो नहीं, आपकी जो ये स्किन है ऊपर की, अरबों सेल्स रोज झड़ते हैं और रोज बनते हैं, रोज नित्य, लेकिन हमको आपको पता नहीं चलता। ऐसा कार्य करता है महाराज कौन? हाँ देखो कितनी विचित्र बात है महाराज। तो ऐसा जो वो परमेश्वर है महाराज, जिसको हाथ पैरों की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी जो कहने का मतलब है यहां पर विशेष रूप से समझने योग्य, अंतिम दिन है ना, इसलिए बिल्कुल अंतिम रूप से समझ लो कि बिना जो स्वरूप का वर्णन किया जाता है, जिसको हम लोग निर्गुण स्वरूप कहते हैं, जहां पर किसी प्रकार से लेश मात्र भी माया का प्रवेश नहीं है, वो भी वही है, और जो माया रूप से हमको ये स्वप्नवत संसार जो दिखाई दे रहा है ये भी वही है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा। हाँ, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन आपके संपूर्ण भेद समाप्त हो जाएंगे, और जिस दिन आपके भेद समाप्त हो जाएंगे फिर आपको ना तो कुछ जानना है ना कुछ आपको पता करने की आवश्यकता है, फिर वो आपको हर समय प्रकट अनुभव होगा, उसके लिए फिर आपको कभी उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, वो आपका हर समय की अनुभूति स्वरूप हो जाएगा महाराज। ऐसा भगवान ने जो ये अपना धाम दर्शन कराया है उन गोप वृंदों को, साधारण से बिना पढ़े लिखे गोप वृंदों को भगवान ने क्या पढ़ा दिया, सत्यम ज्ञान अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, ऐसा स्वरूप दर्शन कराया महाराज, है ना। देखो जो हम लोगों की कल्पना, वही कल्पना उन गोपों की थी कि भगवान हमको भी कभी वरुण लोक दिखाएं या सुंदर लोक के दर्शन कराएं, लेकिन भगवान मुस्कुरा दिए कि देखो ये कितने भोले हैं, सत्य से अलग हटकर किसी और ही दुनिया में महाराज जीना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने वो गलती नहीं की, भगवान ने उनकी इच्छा नहीं पूरी की, भगवान ने वो किया जिसके लिए हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। महाराज एकमात्र कार्य इस मनुष्य शरीर का यही है कि हम जो है इस मनुष्य शरीर का पूरा क्या लें, आनंद लें। तो महाराज जो है आज आखिरी दिन है, इसलिए आपको कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनी, इसलिए कृष्ण भगवान का एक भजन तो हम आपको सुनाएंगे ही सुनाएंगे, है ना। लेकिन उससे पहले जो है आपको बता दें कि हर बार हम रिटायरमेंट की अर्जी लगाते हैं गिरीश भाई से, है ना। और अब तो अभी 25 तारीख को मैंने जो है अपनी अकल दाढ़ निकलवाई है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं विजडम टूथ, और मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं है, थर्ड मोलर है, थर्ड मोलर होता हमारा है अकल दाढ़। अब जिसकी अकल ही खत्म हो गई उसको आप सत्संग करने के लिए बुलाओ तो अब उसको क्या कहेंगे। अब तो अकल ही दाढ़ निकाल दी डॉक्टर ने महाराज, अकल बची नहीं तो हम आपको क्या सत्संग सुनाएंगे। लेकिन गिरीश भाई मेरी बात सुनते नहीं है, आप लोग तो काजी लगा सकते हो मेरी तरफ से भाई, जिसकी अकल दाढ़ी डॉक्टर ने निकाल दी अब अकल बची नहीं तो सुनाएंगे क्या आपको, क्यों जी आप सहमत हैं मेरे संग की नहीं। आपको तीनों लैंग्वेज में मैंने समझा दिया, हिंदी में समझाया, इंग्लिश में समझाया, मेडिकल लैंग्वेज में समझाया, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए क्या कर सकते हैं। तो पुनः एक बार प्रार्थना है, क्योंकि ये तो जो है महाराज श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता जो है ज्ञान निधि है और वक्ता भी ज्ञान निधि होना चाहिए, और मैं तो बड़ा जो है निरक्षर मूर्ख जिसको कहते हैं ना वैसा वाला वक्ता हूं, लेकिन फिर भी जो है हमारे गिरीश भाई मानते नहीं, चिमन भाई भी हमारे अर्जी पीछे से और जो है जोर दे देते हैं। तो पुनः एक बार लेकिन प्रार्थना मेरी तरफ से, हाँ कंस को मारने के लिए आना पड़ेगा, तो देखिए एक साल का प्रारब्ध है उसका, चार दिन की छुट्टी में कंस अपने आप को बचा ले गया, तो मुझे भी अपने बचाने की कोशिश तो करनी है। तो फिर से एक बार प्रार्थना करते हुए गिरीश भाई के चरणों में निवेदन करते हुए कि मुझे जो है रिटायरमेंट दें, क्योंकि इतने दिनों से जो है सुनाते सुनाते तो जैसा भी प्रारब्ध, लेकिन अभी जिस कन्हैया की, जिस नटवर बपू की हमने लीलाएं सुनी हैं, एक गोपी की दृष्टि से भगवान के लिए ये भजन कि एक गोपी किस प्रकार से जो है भगवान को देखती है और उसके अंदर क्या क्या भाव आते हैं, तो नटवर नागर के सुंदर स्वरूप का चिंतन करते रहें। श्रीमद् भागवत का हम लोगों ने एक मास तक श्रवण किया है, इसलिए गोपाल की छवि को अपने हृदय में बसाकर परम ब्रह्म स्वरूप में उसका आनंद लें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गो ये भगवान की विशेषता है, कभी वो हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं और कभी अंतर ध्यान, कभी हमको लगता है हम भगवान के हो गए और कभी हमें लगता है संसार के हो गए। कैसे कहती है गोपी,
कभी सपनों में आ जाना कभी रूपोस हो जाना, कभी सपनों में आ जाना कभी रूपोस हो जाना, ये तरसा ने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गो
भगवान कहते हैं तुझे मुझे भूल जा। रात दिन हमको माया में भटकाते हैं, लेकिन जो समझ गया तो समझ गया। बोले अब नहीं भटकने वाले। क्या कहती है गोपी?
तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गो
जो भगवान का हो गया उसको भगवान की हर अदा पसंद आ जाती। भगवान का जो भी स्वरूप है उसको वो स्वीकार करता। कैसे?
कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन की खातिर तो, इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल धारी जमाने से निराला है। मेरा
और अगर सत्संग का असर आपके जीवन में आ चुका है तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। कैसे?
मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। अरे गो पाल ये मंदिर, अरे गो पाल ये मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। अरे गो पाल ये मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गो पाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गो
भगवान को कहां तक समझें और उसको समझने में कहां तक बुद्धि खर्च करें, इसलिए भलाई इसी में है कि उसको समर्पण कर दो। और समर्पण कर देने में ही सर्व सुख सर्व आनंद। कैसे?
कहीं उखल में बंध जाना, कहीं ग्वालों में जा खेले। कहीं वो उखल में बंध जाना, कहीं ग्वालों में जा खेले तुम्हारी बाल लीला ने, तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है, तुम्हारी लीला ने अजब धोखे में है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गो
और आखिरी में जो बात कही जा रही है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो भगवान के दरबार में आप कभी वीआईपी नहीं बनेंगे। जरा सुनो क्या कहते हैं,
तुम्हें मुझ से हजारों हैं मगर मेरे तुम्ही तो हो, तुम्हें मुझ से हजारों हैं मगर मेरे तुम्ही तो हो, तुम्ही सो जो हमारी और कौन सुनने वाला है, तुम्ही सो जो हमारी और कौन सुनने वाला है, मेरा गोपाल धारी जमाने आला है, रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, मेरा गो गिरधारी जमाने।
क्यों भाई, भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? अब नहीं हुए तो ये आपकी मर्जी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद, एक महीने तक इस मूर्ख को आपने झेला, इसके लिए आपको अति अति धन्यवाद।